त्रिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय श्री कार्तिक मास की जय श्री दामोदर अष्टकम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं दत्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा के अनुष्ठान में आप सबका कार्तिक मास के पावन अवसर पे श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। कल हम दामोदराष्टकम की चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे और आने वाले 3 दिनों में भी करेंगे। तो दामोदराष्टकम के 8 पंक्तियां हैं, श्लोक हैं, उनमें से एक की चर्चा प्राय हो गई कल, थोड़ा शेष कुछ बचा है, फिर दूसरे श्लोक की चर्चा आज करेंगे और फिर आने वाले 3 दिनों में अन्य जितने भी श्लोक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक में हम ये देख रहे थे कि सत्यव्रत मुनि, जो कि इस दामोदर अष्टकम के रचयिता हैं, उन्होंने मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर कह के संबोधित करके नमन किया है, नमस्कार किया है, नमामीश्वरम। और इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के 3-4 विशेषताओं का उल्लेख इस श्लोक में किया है। पहला है तत्व विशेष, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है ईश्वर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो ये कोई साधारण बच्चा नहीं है श्री कृष्ण, ये स्वयं ईश्वर है। उनका शरीर भौतिक नहीं है जैसा कि हमारा शरीर है, उनका शरीर सच्चित आनंद का सघन रूप है। सत अर्थात अमरत्व, जो कभी विनाश नहीं होता है, वो है सत। चित जो ज्ञान से पूर्ण है, आनंद जो आनंद से पूर्ण है, ये है सच्चित आनंद। आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है, परंतु हमारा अनुभव यहाँ पे इस भौतिक सृष्टि में ये है कि हमारी आत्मा अणुरूपी है, कण मात्र है, और ये आत्मा इस भौतिक शरीर में निवास कर रही है। और ये शरीर किन पदार्थों का बना हुआ है? जड़ पदार्थों का, जो कि असत है, अचित है, निरानंद है। हमारी आत्मा और हमारे शरीर में जमीन आसमान का अंतर है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में बिल्कुल अंतर नहीं है। उनका शरीर ही उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा ही उनका शरीर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए, अन्यथा हम गलत कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और साधारण मनुष्यों को भी भगवान कह के संबोधित करने लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में। और ये गलती भारत में अनेक लोग दुर्भाग्यवश करते हैं। इसलिए तत्व विशेष, ये तत्व जानना, ये सिद्धांत सत्य क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो तत्व विशेष का निरूपण श्रील सत्यव्रत मुनि ने ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम में कर लिया है। और फिर वो रूप विशेष का वर्णन करते हैं। रूप विशेष अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य अतुलनीय है, अपार है। ऐसा सौंदर्य और कहीं भी नहीं दिख सकता है। भले कि हम यहां भौतिक जगत में सौंदर्य देखते हैं, परंतु हमारा सौंदर्य जो है, हम हमारे अनुभव के भीतर जो सौंदर्य है वो कुछ भी नहीं है, न केवल ये अल्प है परंतु थोड़े समय के लिए ही रहता है। चाहे व्यक्तियों का सौंदर्य हो, प्रकृति का सौंदर्य हो, थोड़े समय के लिए रहता है फिर नहीं रहता है। और मात्रा में भी, गुण में भी, गुणवत्ता में भी ये सौंदर्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो सौंदर्य है वो हमारे कल्पना से परे है, हम सहन नहीं कर सकेंगे ऐसा सौंदर्य। यहाँ का सौंदर्य लोगों को सहन नहीं होता है कभी कभी इसके बारे में लोग कविताएं लिखते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ का जो सौंदर्य है, इस ब्रह्मांड के भीतर जो स्वर्ग लोक है उस स्वर्ग लोक की तुलना में भी मिट्टी के बराबर है, मतलब कहीं की भी नहीं है। स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं आदि हैं उनका सौंदर्य भी हमारे कल्पना के परे है, और ये भी सब भौतिक है, इस भौतिक जगत के अंतर्गत पाया जाता है। और आध्यात्मिक जगत में, भगवान के वैकुंठ जगत में जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो वास्तव में अचिंत्य है, हमारे चिंतन शक्ति के परे है। और वैकुंठ जगत में जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं तो उनका सौंदर्य, उस सौंदर्य की परिकाष्ठा पाई जाती है। इसलिए गोकुल लसत कुंडलम, उनके कानों में मकर कुंडल झूम रहे हैं, हिलते रहते हैं, नृत्य करते हैं, और श्री कृष्ण के चमकने वाले कपोल या गाल के का स्पर्श करती हैं ये कुंडल, इसलिए बहुत ही भाग्यवान है ये कुंडल। और जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, साधारण व्यक्ति इस दुनिया में आभूषण इसलिए पहनते हैं ताकि उनका सौंदर्य बढ़े, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब आभूषण पहनते हैं तो उनके सौंदर्य के कारण आभूषणों का सौंदर्य बढ़ता है। ये अंतर है भौतिक जगत में और भगवान में। और खास करके जब वो अपने स्वजनों के साथ में, अपने प्रिय निज भक्तों के साथ में रहते हैं तो भगवान की, इसके सौंदर्य की भी असीमित रूप से वृद्धि होती है। इसलिए गोकुले भ्राजमानम, गोकुल के अंदर वो चमक रहे हैं, तेजस्वी प्रकाशमान दिखते हैं। वहां सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है जैसा हम जानते हैं, यहां भौतिक जगत में जो मूल एक परिस्थिति है वो अंधकार की है। इसलिए हमें यहां सूर्य चाहिए, यहां अग्नि चाहिए, बिजली चाहिए, इसके बिना अंधकार होता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है, और ऐसे अवस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन धाम में और भी तीव्रता से चमकते हैं, क्योंकि वो अपने निज भक्तों के संग में हैं जो उनको घेर के रखते हैं हमेशा। तो इससे परिवार विशेष का उल्लेख होता है या वर्णन होता है। फिर अंतिम दो जो पंक्ति, जो आधा श्लोक है, यशोदा भियो लूखला धावमानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, इसमें सत्यव्रत मुनि ये वर्णन करते हैं कि माता यशोदा की भीति से, भीया अर्थात भीति भय, तो माता यशोदा के भय से धावमानम बाल कृष्ण भागने लगते हैं। कहां से? उलूखलाद, जो उखल होता है, जिसको उल्टा करके श्री कृष्ण ऊपर चढ़ के माखन चोरी कर रहे थे मटकों से, परंतु माता यशोदा को आते हुए छड़ी हाथ में ली हुए देखकर आते हुए घबराकर कूद पड़े नीचे और भागने लगे उखल से। तो यशोदा भियो लूखला धावमानम, और माता यशोदा ने क्या किया? परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, गोप्या अर्थात यशोदा, तो माता यशोदा कृष्ण के पीछे भागने लगी। और भागकर पीछे से भागते हुए और भी तेजी से भागे। जिस गति से बाल कृष्ण भाग रहे थे उस गति से और तेजी से भागकर माता यशोदा पीछे से आई और कृष्ण को पकड़ लिया। अब देखिए श्री कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है, आसान की बात तो दूर रही, वास्तव में ये असंभव है। यहां पर दुनिया में हम द्वंद्व बहुत देखते हैं। द्वंद्व अर्थात जैसे सुख है दुख भी है, गर्मी है ठंडी भी है, मान है अपमान भी है, तो ये है द्वंद्व। तो ये है द्वंद्वों की दुनिया। परंतु भगवान वो हैं जिनमें समस्त प्रकार के द्वंद्वों का समन्वय होता है। सारे के सारे द्वंद्व उनमें पाए जाते हैं परंतु परिपूर्ण अवस्था में एक साथ में होते हैं। हमारे यदि अपमान हो रहा है तो मान कैसे होगा, हमारा मान हो रहा है तो फिर सम्मान, अब फिर अपमान नहीं होगा। अब गर्मी लग रही है तो ठंडी नहीं लगती उसी समय। परंतु भगवान श्री कृष्ण परम सत्य होने के कारण उनमें ये समस्त प्रकार के जो द्वंद्व हैं वो एक साथ ही दिखाई पड़ते हैं और इनमें कोई विरोधाभास नहीं होता है। ईशोपनिषद में कहा गया है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तत् अर्थात वो परम सत्य भगवान एजति चल रहे चलते हैं, तन नहीं जति न ए जति, वो चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। तद दूरे वो दूर है, तद वो अंतिके वो पास में भी है, एक साथ में कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति एक ही समय पर दूर भी है पास में भी है, कोई चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। तद अंतरस्य सर्वस्य वो सबके हृदय के अंदर विराजमान है, तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः और एक ही साथ सबके बाहर भी हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। तो यहां ये भौतिक दुनिया में ये सब चीजें हमारे बुद्धि को चकराने वाली बातें हैं, ये सब कैसे एक साथ हो सकता है। परंतु ये सारे तथा कथित विरोधाभास भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में और भी कहा गया है, अनेजदेकम मनसो जवीयो। यद्यपि ये भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, एकम अनेजद एक ही स्थान में रहते हैं, कहां पर, अपने गोलोक वृंदावन धाम में। वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, अपने गायों के साथ वन में चर विचरण कर रहे होते हैं, माता यशोदा के पास होते हैं, गोपियों के साथ रास लीला कर रहे होते हैं, तो एक ही स्थान में है। अनेजत एकम फिर भी मनसो जवीयो, जवीयो अर्थात तेज गति से चलना। वो इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो मन के गति से भी तेज है। देखिए यहां पे भौतिक जगत में गति का अनुभव हम सबको है। हम कभी धीमे गति से चलते हैं, कभी तेज गति से चलते हैं, कभी हम दौड़ते हैं। अब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी और भी तेज गति से चलती है, हवाई जहाज उससे भी तेज गति से चलती है। तो हमें तेज गति धीमी गति का अनुभव है। परंतु सबसे गतिशील जो कौन सा पदार्थ है, क्या चीज है, वो है मन। देखिए हम यहां पर मंदिर में बैठे हैं, पर बैठे बैठे प्रवचन से ध्यान हट जाता है, हट गया ना। जब से प्रवचन शुरू हुआ तब से कितनी बार आपका मन आपका ध्यान प्रवचन से हट गया होगा, अनेक बार निश्चित ही। तो मन का स्वभाव है भटक जाना, इधर उधर भटकना। और हम यहां बैठे हैं, हो सकता है अचानक हमारा ध्यान मन घर की ओर गया, अरे घर में क्या चल रहा है, उन्होंने वो ऐसे किया होगा या नहीं, वो हुआ कि नहीं हुआ। या यहां तक कि हमारा ध्यान यहां बैठे बैठे तुरंत दिल्ली हो सकता है, विदेश में भी जा सकता है, चांद पे भी जा सकता है। तो यद्यपि हम यहां बैठे हैं परंतु मन की गति इतनी तेज होती है कि वो एक क्षण के अंदर भी वो कितनी दूर तक पहुंच सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ईशोपनिषद में बताया गया है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एक स्थान में निवास करते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम में, फिर भी मन की गति से तेज वो चल सकते हैं। नैनत देवा आपनवन, जो बड़े बड़े शक्तिशाली देवगण हैं स्वर्गलोक आदि में निवास करने वाले, वो उनके सामने भी नहीं आ सकते। पूर्वम अर्षत तत् धावतो अन्यन अत्येति, और भगवान श्री कृष्ण जैसे तेज कोई नहीं भाग सकता। भगवान श्री कृष्ण सबसे तेज भाग सकते हैं, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण यदि किसी के पीछे भी हो तो तेजी से उनके सामने वो निकल सकते हैं उनको पार करके, और उनके यदि पीछे कोई हो और श्री कृष्ण यदि दौड़ रहे हो तो उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद में ये और एक बात बताई गई है, भगवान के ऐश्वर्यों की महिमा का वर्णन शास्त्रों में अनेक जगह पाया जाता है। तो यहां यह बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण कितनी तेज गति से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी माता यशोदा ने तेजी से दौड़ के वो कृष्ण को पकड़ लिया जिनको कोई नहीं पकड़ सकता। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले रविवार के कार्यक्रम में हम काल यवन नाम के एक असुर का वर्णन कर रहे थे। इस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में आता है। जब श्री कृष्ण मथुरा लीला समाप्त करना चाह रहे थे तो उन्होंने ऐसी एक योजना बनाई जिसमें न केवल जरासंध अपनी सेना को लेकर आ रहे थे परंतु दूसरी ओर से काल यवन नाम का व्यक्ति भी आ गया। तो श्री कृष्ण ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी द्वारका लीला को प्रारंभ करने के लिए। जैसे मथुरा के निवासी सोए हुए थे रात में, तो अपनी योग शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण ने उनको स्थानांतरित कर दिया एक नए निर्मित शहर में जिसका नाम था द्वारका। रातों रात ये बन गया शहर समुद्र के भीतर द्वारका। और जब मथुरा के निवासी रात को सोए थे मथुरा में और सुबह उठे तो द्वारका में, अरे ये कहाँ आ गए हम। तो अभी जब द्वारका के निवासी वहां नहीं थे तो श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो अब और भी कार्य मुझे संपन्न करने हैं। तो वो काल यवन के सामने बाहर आए परंतु काल यवन की ओर देखा भी नहीं, सीधे दूसरी ओर चलते पड़े। चलते 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 वहां जब काल यवन ने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि दूसरी ओर चल के जा रहे हैं, बड़े आराम से चल के जा रहे हैं, तो काल यवन को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्से में आके ललकारने लगा श्री कृष्ण को, अपशब्द कहने लगा और श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। और काल यवन दौड़ने लगा कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण केवल चल रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे, परंतु यद्यपि काल यवन को लग रहा था कि ये चल रहे हैं और वो स्वयं दौड़ रहा था, अपनी सारी ताकत लगा के दौड़ रहा था, फिर भी श्री कृष्ण दूर ही रह रहे थे, वो श्री कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। तो दौड़ते दौड़ते अचानक वो पीछे गया और श्री कृष्ण आराम से चलते जा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण का आराम से चलना काल यवन के तेज गति से दौड़ने से भी तेज था। फिर श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए जहां राजा मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे, और उसके बाद की कथा तो आप सब जानते हैं कि राजा मुचुकुंद ने फिर काल यवन की हत्या कर दी अपनी आंखों को खोलकर। तो काल यवन इतनी तेजी से कृष्ण के पीछे भाग रहा था, वो पकड़ नहीं पाया श्री कृष्ण को, यद्यपि वो इतना शक्तिशाली था। और माता यशोदा एक साधारण ग्रामीण की एक महिला थी, थोड़ा वजन भी ज्यादा था उनका, यद्यपि यहाँ पे चित्रों में माता यशोदा को ऐसे वजनदार नहीं दिखाया हुआ है, परंतु जो वर्णन है कि थोड़े वजनदार थी, तो भागने में उनको कष्ट हो रहा था। तो ऐसे अवस्था में जब छोटे बच्चे भागते हैं तो आप में से जो माताएं हैं जिनके छोटे बच्चे हुए हैं, कभी आप जानते हैं कि जब बच्चे भागने लगते हैं तो उनके पीछे भागकर उनको पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, आसान नहीं होता है, वो तेज़ गति से भागते हैं। फिर भी ऐसी महिला किस प्रकार से श्री कृष्ण को दौड़ते हुए पकड़ पाई? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो ध्यान में बैठते हैं, अष्टांग योग की पद्धति को स्वीकार करते हैं और अपने ध्यान में हृदय में स्थित परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं, परंतु परमात्मा उनके पकड़ में नहीं आते हैं। अनेक जन्मों तक ऐसे कष्ट उठा उठा के भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, कैसे हम परम सत्य को प्राप्त कर लें और स्वयं परम सत्य बन जाएं, परंतु नहीं संभव। तो वो परम सत्य जिनको बड़े बड़े ज्ञानी योगी इत्यादि प्राप्त नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसे श्री कृष्ण के पीछे माता यशोदा भागी और भागकर वो श्री कृष्ण को पकड़ पाई। तो ऐसे क्यों पकड़ पाई? ऐसी क्या विशेषता माता यशोदा में थी जो कि काल यवन में नहीं थी, जिसके द्वारा माता यशोदा सफल हो गई कृष्ण को पकड़ने में और काल यवन जैसे व्यक्ति असफल हुए? यहां तक कि बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी असफल रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें दूसरे श्लोक में मिलेगा, दामोदर अष्टकम का, और दूसरे श्लोक के केवल अंत में मिलेगा। परंतु इसके पहले एक पृष्ठभूमि है जिसमें और वर्णन में लीला विशेष का वर्णन करते हैं सत्यव्रत मुनि। तो अंतिम जो भाग था पहले श्लोक का, उसमें लीला विशेष का वर्णन था और अभी ये लीला विशेष का वर्णन और भी जारी है। तो आइए हम अभी इसको गीत रूप में गाते हैं। दूसरा श्लोक है,
रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम्। मुहुश्वासकंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्।
श्रील प्रभुपाद द्वारा नहीं, बीबीटी द्वारा अनुवाद। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं, उनके गले का मोतियों का हार जो शंख के भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूं। ऐसे महान भक्तों के प्रार्थनाओं को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और बोलना भी चाहिए। सारे जो गूढ़ से गूढ़ रहस्यमय जो आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें होती हैं, ऐसे महान संतों की रचनाओं में पाई जाती हैं। जिन बातों को भले शास्त्रों में पढ़ के भी इतना स्पष्ट नहीं हो पाता है,
वो ऐसे महान संतों की रचनाओं से भी उपलब्ध हो जाता है। तो यहां पे दूसरे लाइन में देखिए, कराम भोज युग्मेन, कर कर मतलब हाथ, अम्भोज अर्थात कमल, कर कमल, भगवान के हर शरीर के अंग को कमल से जोड़ा जाता है, क्योंकि कमल जो है बहुत सुंदर होता है, बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जैसे चरण कमल, कर कमल, तो अम्भोज अर्थात कमल, तो कर कमल युग्मेन, युग्म अर्थात दो, दो हाथ हैं, युग्मेन मतलब दोनों हाथों से, तो कर कमल, दोनों कर कमलों से उन्होंने क्या किया, नेत्र युग्मम मृजंतम, नेत्र आंखें युग्मम दो, अपने दो करम कर कमलों से उन्होंने अपने दो नेत्रों को क्या किया, मृजंतम मलना शुरू कर दिया, मसलना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे करते हैं ना कभी कभी ऐसे, तो ये है इसका तात्पर्य, कराम भोज युग्मेन नेत्र युग्मम मृजंतम। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने अपने दिग्दर्शिनी टीका में इस प्रकार से वर्णन किया है, वो कहा है कि इसके इसको तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला जो तात्पर्य वो देते हैं वो ये है कि श्री कृष्ण चाहते थे, जैसे हर एक बच्चा चाहता है कि उसे डांट न मिले माता से, अब श्री कृष्ण समझ गए कि माता यशोदा छड़ी लेकर आई है तो अभी दंड मिलने वाला है, न केवल डांट परंतु दंड भी मिलेगा। दंड के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि हाथ में छड़ी थी, तो छड़ी जब हाथ में लेके कोई आता है तो दंड ही मिलेगा। तो हर एक बच्चे के सामने जब माता पिता छड़ी लेकर आते हैं तो बच्चा सोचता है कैसे निकलें इस परिस्थिति से, कैसे दंड न मिले हमको। तो कृष्ण डर गए थे, अरे दंड मिलने वाला है मुझे, तो दंड से कैसे बचें। तो बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो कभी कभी ऐसे नखरे करते हैं, ऐसे नाटक करते हैं। तो यहाँ भौतिक जगत में भी बाल लीला ऐसे बच्चों की होती है, एक साधारण व्यवहार बच्चों का होता है, हर एक बच्चे ने किया, हम सब ने भी किया होगा हमारे बचपन में। तो वो कैसे, वो चाहते हैं कि दंड न मिले, माँ की करुणा को जागृत करके। माँ की करुणा कब जागृत होगी, जब माँ देखेगी कि बच्चा बहुत डर गया है। तो बच्चा इतना डर गया तो माँ सोचती है, अरे ठीक है भाई, दंड नहीं करेंगे, चलो छड़ी रख देंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भयभीत तो हो गए थे, परंतु अब जो इतने भयातुर हो गए थे कि उनको लगा कि मैं यदि इस तरह से और कार्य करूँगा और मैं रो पड़ूंगा और आंखें मसलना शुरू कर दूंगा, रुदंतम मुहुर, रुदंतम मतलब रोना, मुहु मतलब बार बार रोना, तो रुदंतम मुहुर बार बार रोते हुए यदि मैं मेरे दोनों हाथों से कर कमलों से मेरे दो आंखों को मसलना शुरू कर दूंगा और रोने लगूंगा तो फिर माता यशोदा के मन में करुणा उत्पन्न हो जाएगी, शायद मुझे वो दंड नहीं देंगी। तो ये पहला तात्पर्य है इस बात का। दूसरी बात वो कहते हैं कि भगवान के हृदय में जो भय उत्पन्न हुआ था, उस भय के कारण धीरे धीरे से आंखों में आंसू जम रहे थे, तो ऐसे मसल के अपने आंखों को श्री कृष्ण आंसुओं को बाहर निकालना चाहते थे ताकि माता यशोदा देखे कि देखो आंसू आ रहे हैं, केवल आंखों में नहीं है, नीचे गिर रहे हैं आंसू। और तीसरी बात वो कहते हैं कि ऐसे भी जब हुआ, जब रोने लगे तो आंसू गिरने लगे मुख के ऊपर, तो दोनों हाथों से आंसुओं को पोंच रहे थे अपने सुंदर मुखारविंद के ऊपर से। और फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं सातंक नेत्रम, ऐसे भयातुर अवस्था में उनकी आंखें भी वो भय को प्रकट करने लगीं। देखिए कभी कभी जो व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति भले न दिखाना चाहे अन्यों को, फिर भी आंखों से पता चलता है। कभी कभी व्यक्ति खुश खुश हो जाता है परंतु अपनी हंसी को रोक देता है, परंतु आंखों से पता चलता है कि ये खुश हो गया है। कभी कभी व्यक्ति गुस्सा हो जाता है परंतु दिखाना नहीं चाहता है कि मुझे गुस्सा आ गया है, फिर भी आंखों से पता चलता है। हमारी बात तो दूर रही, ब्रह्मा जी के लिए भी ऐसे हुआ। ब्रह्मा जी के जो सबसे वरिष्ठ चार पुत्र थे चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि चलो अभी प्रजा की उत्पत्ति करनी है, ब्रह्मांड के भीतर प्रजा उत्पत्ति के से सारा ब्रह्मांड भर जाना चाहिए, तो तुम अभी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो तुम चारों। ये एक आदेश है, जो बच्चे अपने पिता का न पालन करे तो शास्त्र में अनुमति है। एक हमने रहस्य बता दिया ये एक आदेश, अन्य आदेशों का पालन करना चाहिए। तो चतुष्कुमारों ने मना कर दिया कि हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे, मैं तो आदि ब्राह्मण हूँ, सबसे पहला गुरु हूँ इनका, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ब्रह्मांड में हूँ, इनका पिता हूँ, मैं आदेश दे रहा हूँ और ये सामने से मना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ब्रह्मा जी जैसे उन्नत व्यक्ति, सारे इतने बड़े भक्त आचार्य के मन में भी क्रोध आ गया, परंतु क्रोध को रोक लिया क्योंकि इतने बुद्धिमान है ना, इतने ज्ञानी हैं, तो अपने ज्ञान के बल से अपने क्रोध को रोक लिया, कुछ बोला नहीं उन्होंने, परंतु क्रोध तो अंदर से था तो निकलना था किसी प्रकार से, तो उस प्रकार से उनके भ्रिकुटी के बीच में से क्रोध प्रकट हुआ। किस रूप में? रुद्रदेव प्रकट हुए, शिवजी, जो कि वैसे कैलाश में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, परंतु उनको भी यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए कोई निमित्त चाहिए, कोई लीला चाहिए, तो वो भी ऐसे ब्रह्मा जी के भ्रुकुटियों के बीच में से प्रकट हो गए। तो खैर, ये आंखें जो होती हैं, ये भी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब श्री कृष्ण अपने आंखों से भी वो भय प्रकट करा रहे थे, शतांक नेत्रम, और नेत्र इधर उधर इधर उधर देख रहे थे भयभीत अवस्था में। और फिर मुहुश्वासेन, मुहु मतलब बार बार, श्वासेन मतलब भारी सांस लेके रोना। जब बच्चे रोते हैं तो कभी भारी भारी सांस लेके रोते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण भी भारी सांस ले रहे थे और रो रहे थे। मुहुश्वासेन, श्वासेन अर्थात ऐसे भारी सांस लेके रोने से क्या हो रहा था? कंप, ये कंप, यहां पर देखिए वो दृश्य दिखाई दे रहा है सुंदर चित्र में। हाँ, श्लोक में फिर से ये मुहुश्वास कंप, तो ऐसे मुहुश्वास से कंपन हो रहा था। कंपन कहाँ हो रहा था? कंपन किस में हो रहा था? अंतिम लाइन में देखिए, ग्रैवम। ग्रैवम किस शब्द से आता है? ग्रीव, ग्रीव अर्थात गर्दन, तो गर्दन से संबंध जो है उसको ग्रैवम बोलते हैं। तो खास करके जो गले के ग्रीव के आभूषण होते हैं उसको ग्रैवम बोलते हैं। ग्रीव शब्द आपने कहां सुना है? हाय ग्रीव, दश ग्रीव, दश ग्रीव, दश ग्रीव कौन है? रावण है। क्यों? दस सर थे, इसलिए दश ग्रीव, संस्कृत में दस को दश बोलते हैं, तो दश ग्रीव रावण का नाम था। और हयग्रीव भगवान के अवतार थे, घोड़े का मुख था, इसलिए गर्दन घोड़े की थी, हय, तो हयग्रीव। तो उसी प्रकार से ग्रीव से ग्रैव, ग्रैवम, तो भगवान श्री कृष्ण मोतियों की माला पहनते हैं, तो ये मोतियों की माला ग्रैवम, ये कहां पे स्थित है? मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, उनके कंठ में जो अंकित है तीन रेखाओं से, त्रिरेखा अंक कंठ। तो जैसे आपने शंख को देखा होगा, शंख में तीन रेखाएं होती हैं, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ग्रीव या कंठ में तीन रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। आप कोई भी चित्र देखिए भगवान श्री कृष्ण का, तो उनके कंठ में ये तीन रेखाएं दिखाई पड़ेंगी। तो त्रिरेखांक कंठ स्थित, तो जो मोतियों की माला भगवान श्री कृष्ण के कंठ पे स्थित थी, जिस कंठ में तीन रेखाएं हैं शंख के समान, वो जो मोतियों की माला है उसमें कंपन होने लगी। किससे? कैसे? मुहुश्वासेना, मुहुश्वास, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार रो रहे थे और शरीर उनका भारी सांसों से हिल रहा था, तो ये मोतियों की माला भी हिल रही थी। ये वर्णन यहां पर सत्यव्रत मुनि करते हैं। मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम। और माता यशोदा कैसे देख रही है श्री कृष्ण को? दामोदरम। दामोदर का अर्थ क्या है? दाम और उदर। दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर इसलिए हुआ क्योंकि उनका पेट रस्सी से बांधा गया, तो दामोदरम। तो श्रीमद् भागवत में के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को अपना एक पुत्र मानती थी। ये साधारण बच्चा है, मेरा पुत्र है ये। वैसे वात्सल्य भाव जो है, खास करके मातृत्व की भावना ऐसे होती है कि भले बच्चा बड़ा भी क्यों ना हो जाए, वो अपने बड़े बच्चे को भी छोटा बच्चा मानकर ही बात करती है। देखो अब रास्ता पार कर रहे हो, बाएं देखना, दाहिने देखना, फिर आगे चलना, अरे भोजन लिया कि नहीं लिया। ये मातृत्व, ये स्वभाव होता है। पिता ऐसे नहीं करते, अब बड़ा हो गया करने दो। लेकिन माता का भाव रहता है। तो अभी जब श्री कृष्ण के प्रति ये वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है, तो माता यशोदा ने देखा है कि श्री कृष्ण ने ऐसे अद्भुत कार्य कर दिए हैं, जैसे कि उन पूतना का वध कर दिया, शकटासुर का वध कर दिया, तृणावर्त का वध कर दिया, ऐसे भयानक बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया। फिर भी माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम इतना तीव्र था कि वो सोच रहे थी, अरे ये बच्चा क्या कर लेगा, इसने थोड़ी असुरों को मारा, ये तो भगवान की कृपा से कुछ हुआ होगा, ये तो मेरा छोटा बच्चा है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को केवल एक साधारण बच्चा समझते थे, और इसीलिए तो फिर उन्होंने साहस किया श्री कृष्ण का पीछा करने के लिए और उनको बांधने के लिए। यदि माता यशोदा सोचते हैं कि ये भगवान है, तो क्या इस प्रकार से बर्ताव करती हैं भगवान से? नहीं, वो तो हाथ जोड़ के रह जाती। बल्कि माता देवकी क्या और वसुदेव के साथ मथुरा में ऐसे हुआ, जब श्री कृष्ण मथुरा में आए और उन्होंने कंस आदि का वध कर दिया, तो चकाचौंध रह गए देवकी और वसुदेव। अरे हमने सोचा कि ये हमारा पुत्र है, परंतु ये तो भगवान है। और तुरंत उनका जो वात्सल्य प्रेम है वो शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। अभी उनके मन में जो वो एक मिठास थी वात्सल्य प्रेम की, वो कमजोर हो गई। अब वो सोचने लगे कि अरे ये तो भगवान है, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, अरे ये मेरे माता पिता है और ये मेरे को प्रभु स्वामी भगवान क्या है कि सोच रहे हैं, अरे रे रे, वात्सल्य प्रेम का आनंद नहीं आएगा। फिर से योग माया का पर्दा उनकी आंखों के सामने डाल दिया। फिर से वसुदेव और देवकी सोचने लगे, अरे रे नहीं, ये तो हमारा बच्चा है। परंतु ऐसे योग माया का पर्दा दोबारा डालने की आवश्यकता माता यशोदा के आंखों के ऊपर नहीं पड़ी। ये है अंतर वृंदावन में और अन्य स्थानों में, वो अन्य स्थान मथुरा भी क्यों ना हो। माता यशोदा का जो माधुर्य भाव है, मधुर भाव वात्सल्य का, वो इतना तीव्र था कि भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के बाद भी उस प्रेम के मिठास में, मधुरता में कोई कमजोरी शिथिलता नहीं आई। ये वृंदावन की विशेषता है। तो वो ऐसे क्यों बांध सकी श्री कृष्ण को, क्यों उनका पीछा करके बांध सकी, ये प्रश्न हमने पहले श्लोक की चर्चा के अंत में पूछा था, तो अभी ये उत्तर आता है इन दो शब्दों में अंत में, भक्ति बद्धम। बद्धम अर्थात बांध देना, बांध दिया। कैसे बांध दिया माता यशोदा ने? भक्ति के कारण, प्रेम के कारण। वैसे माता यशोदा की दृष्टि से उन्होंने श्री कृष्ण को केवल स्वयं उनके वात्सल्य प्रेम से बांध दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से क्या हुआ? वो किस तरह से बांधे गए? वो एक से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार बांधे गए, और वो क्या सिद्धांत है? भक्त वश्यता। वश, वश अर्थात नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण आपके अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। वैसे भक्त कहना ठीक नहीं है, भक्ति कहना ठीक है। भक्त के अंदर जो भक्ति है उसके वश में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, इसलिए भक्त वश्यता। ये भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही परम लक्षण है, बहुत ही आकर्षक गुण है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में श्री श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण आकर्षणी, ये भक्ति का एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, गुण है। परंतु ये गुण सबसे ऊंचे स्तर के भक्ति में ही पाया जाता है। हम साधारण भक्त हैं, साधक भक्त हैं, हमारी भक्ति में उतनी तीव्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, मिठास नहीं है कि हम श्री कृष्ण को वश में कर लें। परंतु माता यशोदा जैसे शुद्ध भक्त, उनकी भक्ति इतनी मीठी है, इतना तीव्र है, इतना श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है कि वो भगवान श्री कृष्ण को वशीभूत कर देती हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से बिक जाते हैं ऐसे ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथों में। तो इस लक्षण को, इस गुण को भक्ति वश्य, भक्त वश्यता कहते हैं। यद्यपि ऐसी कोई रस्सी भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में नहीं है जो कि श्री कृष्ण को बांध सकती है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से बंधने के लिए तैयार हो गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी 9वें अध्याय में दशम स्कंद के बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि वहां कौन सी हास्यपद घटना हुई। माता यशोदा ने जब पकड़ लिया श्री कृष्ण को तो ऊखल के पास ले आई और ऊखल के पास खड़ा रखा श्री कृष्ण को और हाथ में रस्सी ले ली। वो रस्सी लंबी थी तो श्री कृष्ण को पकड़ के रस्सी घुमा ली, ऊखल से भी घुमाकर श्री कृष्ण को घुमाकर वो रस्सी बांधने के लिए तैयारी कर रही थी। परंतु उन्होंने देखा कि ये रस्सी दो उंगली कम पड़ रही है। यद्यपि रस्सी तो लंबी थी, श्री कृष्ण का कमर, श्री कृष्ण तो बाल्यावस्था के थे, बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में बच्चों की कमर कितनी लंबी हो, चौड़ी होती है? बहुत कम। तो श्री कृष्ण के कमर से और दो गुना ना घूम के ले जाना होता है, तो जो रस्सी माता यशोदा ने ली थी उसकी लंबाई श्री कृष्ण को कमर बांधने के लिए पर्याप्त थी वास्तव में। परंतु जब श्री माता यशोदा ने प्रयत्न किया तो उन्होंने देखा कि दो उंगली कम पड़ गई। तो माता यशोदा का आश्चर्य हो कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन फिर भी चलो और रस्सी ले ली उन्होंने। पहले रस्सी से बांध लिया और दोबारा श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, फिर भी ये दोनों रस्सियां इकट्ठे भी दो उंगली कम पड़ गई। माता यशोदा को और आश्चर्य हुआ, तीसरी रस्सी ले आई वो भी पहले दो रस्सियों को बांध के फिर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, फिर भी रस्सियां दो उंगली कम पड़ रही थी। अब माता यशोदा का जो उत्साह है वो और भी बढ़ा। कई होते हैं ना जो थोड़ी कोई कठिनाई होती है भक्ति में तो भक्ति छोड़ देते हैं ना, अरे किसी ने कुछ बाधा डाल दी रास्ते में, कोई कठिनाई हो गई, कुछ हो गई। परंतु माता यशोदा से हमें सीखना चाहिए, जिद पकड़ के रखना चाहिए, वो हठ होना चाहिए हमारे अंदर कि भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भगवान की सेवा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो जिद नहीं होगी हमारे अंदर, हम भगवान की प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम इतना तीव्र था, वो सोच रही थी इस नटखट बच्चे को मैं दंड देकर ही रहूंगी, नहीं तो आगे चल के ये बिगड़ जाएगा, इसलिए दंड देना ही पड़ेगा उसको। तो माता यशोदा ने सोचा जो भी हो रहा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये रस्सी कम क्यों पड़ रही है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, जब तक इसको बांधूंगी नहीं तब तक मैं रुकूंगी नहीं। एक के बाद जितने भी घर में रस्सियां थी एक के बाद लाके बांधते रही, हर बार वो रस्सियां दो उंगली कम पड़ती गई। अभी माता यशोदा के पसीने छूट रहे थे, माता यशोदा की सांस भी भारी हो रहे थे क्योंकि इतना प्रयास कर रही थी। तब तक सारे ब्रज वृंदावन में खबर फैल गई, माता यशोदा श्री कृष्ण को डांट रही हैं, दंड दे रही हैं, उखल से बांध रही हैं। सारे गोपियां अपने काम को छोड़कर अपने अपने घरों से भागते हुए आ गईं ये दृश्य देखने के लिए। और जब वो देखने लगी कि श्री कृष्ण को बांध नहीं पा रही है माता यशोदा, हर बार दो उंगली कम पड़ रही है, तो सारे गोपियां हंसने लगी, अरे छोड़ दो यशोदा, अभी नहीं होगा ये सब, तुम्हारा बच्चा ये पता नहीं कौन है क्या है, नहीं होगा, छोड़ दो, अभी रहने दो। परंतु माता यशोदा जो माँ का जिद होता है, ने कहा नहीं मैं बांध के ही रहूंगी। फिर माता यशोदा भी हंसने लगी कि पता नहीं क्या अद्भुत बात है इस बच्चे में। फिर अंततः माता यशोदा के प्रयास को देखकर श्री कृष्ण तैयार हो गए, और इसलिए अचानक से फिर रस्सी आ गई साथ में, फिर माता यशोदा ने बांध दिया श्री कृष्ण को। तो आचार्यों ने इसके बारे में इस रहस्य का खुलासा किया है कि बार बार दो उंगली कम क्यों पड़ रही थी, क्योंकि ये दो उंगली दो चीजों के प्रतीक हैं। एक उंगली है हमारा प्रयास, परिश्रम भक्ति में, जैसे माता यशोदा को परिश्रम करना पड़ा ना काफी, तो हमें भी भक्ति में परिश्रम करना चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भक्ति नहीं मिलेगी हमें, बैठे बैठे हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठेंगे कि हमें प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा, हमें प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि हम सोचें कि केवल मेरे प्रयास के ऊपर भक्ति निर्भर है और मैं प्रयास करूंगा तो निश्चित भक्ति मिल जाएगी, ये भी गलत है। प्रभुपाद जी भेद करते हैं भक्तों में एक ओर और योगी ज्ञानी इत्यादि दूसरे ओर। जो योगी लोग होते हैं ज्ञानी लोग होते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं कि केवल मेरे तपस्या के बल पे मैं आत्म साक्षात्कार हो सकता हूं, परंतु भक्त प्रयास करता है तपस्या करता है परंतु ये नहीं सोचता कि केवल मेरे प्रयास से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। भक्त जानता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए जिसके बिना भक्त का प्रयास असफल होगा, और वो क्या है, भगवान की कृपा। तो दूसरी उंगली जो है वो कृपा है भगवान की। तो जब तक ये दो उंगलियां ये दो चीजें नहीं होंगी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हो पाएंगे। तो कौन से हैं ये दो चीजें, हमारा प्रयास और दूसरी बात भगवान की कृपा। दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सोचे भगवान की कृपा पर आधारित है ना भक्ति, तो हम बैठे रहेंगे भगवान की कृपा आ जाएगी, नहीं आएगी, हमें प्रयास करना होगा। जैसे माता यशोदा ने प्रयास किया, अंततः फिर वो मान गए भगवान कृष्ण, माता यशोदा के प्रयत्न से उनका हृदय पिघल गया, अरे मेरी भक्त इतनी प्रयास कर रही है। उसी प्रकार से जैसे एक बटु व्यक्ति यदि चांद को पकड़ने का प्रयास करे खड़े होकर, क्या यह संभव है, यह हास्यपद है। उसी प्रकार से हम कौन हैं, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता क्या है, क्या हम लोग भगवान कृष्ण को पकड़ सकते हैं? असंभव है, हास्यपद है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय पिघल जाएगा। अरे ये बेचारे भक्त हैं राधा गोकुलानंद मंदिर में, इतना प्रयास कर रहे हैं बेचारे, चलो इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो दोनों चीजें चाहिए, और माता यशोदा के प्रेम भरे प्रयास के कारण माता यशोदा को ऐसे कृपा मिली जो कि ब्रह्मा जी को नहीं मिली, शिव जी को नहीं मिली, अन्य देवताओं की बात दूर है, यहां तक कि लक्ष्मी देवी को वैकुंठ में भी नहीं प्राप्त हो पाई। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में कभी कभी प्रतियोगिता होती है, स्पर्धा होती है, और भगवान श्री कृष्ण कभी कभी जानबूझ के हार जाते हैं, और ऐसे हारने में वो ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भक्त से नहीं हार जाते हैं, भक्तों के प्रेम के सामने हार जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बात बताते हैं, वो कहते हैं कि पहले भगवान ने इतना कठिन क्यों बनाया माता यशोदा को, उनको बांधने के लिए दो उंगली कम बार बार ऐसे काफी समय तक क्यों होता रहा। तो चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं इस संदर्भ में। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, अरे मैं यहाँ पे वृंदावन में आया हूँ और बाल्य अवस्था में हूँ, माखन चोरी करने के लिए, मेरे मित्रों के साथ खेलने के लिए, यहाँ थोड़ी ऐसे बंद के खड़े रहने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो खेलना है, अभी मुझे देरी हो रही है, और यहाँ माता यशोदा मुझे रोक लेंगी, बांध लेंगी, तो वहाँ माखन चोरी कौन करेगा, वहाँ जाके खेल क्रीड़ा कैसे होगी, तो मुझे खेलना है। तो ये भगवान का संकल्प था, उनकी इच्छा थी। तो भगवान के अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है सत्य संकल्प शक्ति। तो जैसे ही भगवान सो इस संकल्प लेते हैं कि मुझे ऐसे करना है, अर्थात उनकी सत्य संकल्प शक्ति जो है जागृत होती है, तो ये सत्य संकल्प शक्ति उनको उनकी विभूति शक्ति को जागृत करती है। विभूति अर्थात अन्य जो भी उनके ऐश्वर्यों को जागृत करके उनको संभव बनाती है। तो उनकी विभूति शक्ति ने फिर ऐसे एक योजना कर दी जिसके द्वारा वो रस्सी हमेशा दो उंगली कम पड़ गई। फिर बाद में कैसे वो रस्सी मिल गया, कैसे बांध सकी माता यशोदा, क्योंकि माता यशोदा परिश्रम कर रही थी, विभूति शक्ति सत्य संकल्प शक्ति ये कार्य कर रही थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जितने भी शक्तियां हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम जो शक्ति है वो है कृपा शक्ति। माता यशोदा के परिश्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा शक्ति उद्भूत हुई, और इस कृपा शक्ति ने ये अन्य दो शक्तियों का दमन कर दिया, ऐ तुम बैठ जाओ, अब कृपा देने का समय आया है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा शक्ति भर के उभर आई, और फिर माता यशोदा को देखकर कृपा शक्ति के कारण फिर उन्होंने माता यशोदा श्री कृष्ण को बांधने में सफल हो पाई। तो अभी क्या समय है, 8:36 हुए, तो अभी समय हो गया है। वैसे इस श्लोक का वर्णन भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, खैर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और इसकी चर्चा बहुत मधुर है, तो इस श्लोक की चर्चा आगे भी हम कल कर लेंगे, और हो सकता है तो और दो श्लोकों की चर्चा भी कल ही कर लेंगे। तो क्योंकि अभी दर्शन खुलने वाले हैं, इसके पहले थोड़ी सूचनाएं भी हैं, तो वो भी हम सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री दामोदर की जय, यशोदा दामोदर की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कार्तिक मास में भीष्म पंचक पर्व के दौरान इस कृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन की सुंदर कथा के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी का, तीन बार जोर से हरि बोल कह के।
हरि बोल।
कल रविवार है तो यहाँ पर दोपहर को कार्यक्रम होता है, तो दोपहर को इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और कथा दोपहर में ही होगी। कल शाम को कथा नहीं होगी, लेकिन कल शाम को आप दीपदान के लिए अवश्य आएं और गोपी गीत का भी गायन होगा।
तो याद रखिए कल कथा दोपहर के होगी, परंतु शाम को आना है आपको फिर भी दीपदान के लिए।
तो जो आज का प्रसाद पुरस्कृत किया है उन भक्तों का नाम इस प्रकार है, श्री राधा सेवा माता जी, उनका जन्मदिन है शायद उसी के उपलक्ष में ये प्रसाद पुरस्कृत किया है, तो हम उनसे विनती करेंगे कि आगे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुपुत्र बलराम प्रभु धन्यवाद देते हैं हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि। और दो भक्तों ने भी गुप्त दान के द्वारा यहाँ पे सहयोग दिया है आज के प्रसाद में, तो हम सामूहिक तौर पे तीनों भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हम उन भक्तों का भी स्वागत करना चाहेंगे जो आने वाले तीन दिनों में यहाँ पर सहयोग देकर प्रसाद हम पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो अभी आपको सिर्फ पीछे मुड़ना है और भगवान का दर्शन खुलने ही वाला है और यहाँ पर शयन कीर्तन प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद हम की व्यवस्था है, कृपया प्रसाद पाकर ही जाए। हरे कृष्ण। लाइट्स स्विच ऑफ कर दें थोड़ा।
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणेन्द्र विशेष शून्यवादी पाश्चात्य।